ओम शांति। प्रत्येक मनुष्य को ये सदा ही जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और फिर कहां हमें जाना है। इसी के लिए ही शास्त्रों में कहा गया है कि मानव मन का ये प्रश्न कि को हम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए ही विविध चिंतकों ने चिंतन किए और अपने चिंतन अनुसार हरेक ने अपने अपने जवाब दिए। यही कारण है जो इन मूल सत्यों को लेकर के आज संसार में अनेक विचारधाराएं फैली हुई हैं। और ये भी सत्य बात है कि इन सनातन सत्यों को यथार्थ रूप से जाने बिगैर हम अपना जीवन भी यथार्थ रूप से जी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी मान्यता अनुसार व्यवहार करता है और मान्यताएं जीवन के हर पहलू के संबंध में बनी हुई होती है। भाई, आत्मा के बारे में आप क्या मानते हैं, परमात्मा के बारे में आपकी क्या मान्यता है, सुख के बारे में, दुख के बारे में, आलोक परलोक, कर्म कर्म फल, पुरुषार्थ प्रारब्ध, जीवन के अनेक एस्पेक्ट हैं और उनसे संबंधित हरेक की अपनी अपनी मान्यता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि जीवन क्या है, ये संसार क्या है, तो क्या आप सबसे एक जवाब मिलेगा? हाँ, नहीं। हरेक की अपनी अपनी मान्यता, जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, वो मान्यता आपके अपने मन की है या अन्य की स्वीकार की हुई है। लेकिन ये सत्य बात है कि इंसान अपनी मान्यता के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई ये मानता है कि जीवन क्या है, खाओ पियो मौज करो, तो वो अपना जीवन उसी ही रीति से जिएगा। और अगर ये मानता है कि ये जीवन वैल्यूएबल है और हमें उनको अच्छे कार्यों में सार्थक करना चाहिए, तो उनकी जीवन पद्धति दूसरी होगी। अगर हमारी मान्यताएं गलत हैं, तो जीवन भी गलत ही चलता रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि अगर हम अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को, अपने जीवन को यथार्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सभी मान्यताओं को यथार्थ बनाना होगा। और हम अपनी मान्यताओं को सही तब बना सकते हैं जब हमारे पास वो सही ज्ञान है। इसलिए मैंने कहा कि संसार के जो भी सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स जिसको कहते हैं, उन सनातन सत्यों को यथार्थ रूप से जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस प्रथम सत्र में जीवन का प्रथम सत्य आप समझेंगे कि मैं कौन हूं। हर एक इस बात का महत्व बताते हैं कि नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानना माना क्या? कहा जाता है कि खुद को जानो तो खुदा को पहचान सकोगे। तो ये खुद को जानना माना क्या? हम प्रार्थना भी सदा यही करते हैं कि अंतर मम विकसित करो। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये प्रार्थना है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। तो ये अंतर क्या है? हमारा अपना आंतरिक स्वरूप क्या है? तो हम अपने इस बाह्य शारीरिक स्वरूप को तो जानते हैं। जो शारीरिक स्वरूप हमें इस संसार में आने के बाद प्राप्त हुआ है, और इस स्वरूप के परिचय को भी हम जानते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और इसलिए शारीरिक परिचय ही एक दो को बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो हम उसके उत्तर में अपना शारीरिक परिचय ही देते हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं फलाने गांव का हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, हम बनिया हैं, ब्राह्मीन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ये जो हमारा इहलौकिक सांसारिक परिचय है वो ही हम जानते हैं और वो ही एक दो को बताते हैं। जो परिचय हमें इस दुनिया में आने के बाद प्राप्त हुआ, शरीर धारण करने के बाद, जन्म लेने के बाद हमें ये नाम मिलता है, फिर संबंधों में हम बंधते हैं, पढ़ाई से हमें डिग्री मिलती है, फिर हमें पोस्ट पोजीशन मिलती है, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं वो हमारा धर्म हो जाता है। तो ये परिचय हमें इस दुनिया से प्राप्त होता है और इस शारीरिक परिचय को हम इस दुनिया में ही छोड़ करके जाते हैं। स्पष्ट है कि आज हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस में यही बात रहती है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष, मैं काला हूं या मैं गोरा हूं, मैं युवा हूं या मैं बुजुर्ग। हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में भी हम देहभान में रहते हुए ही हर कर्म करते हैं। आप अपने मन की स्थिति को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही कार्य व्यवहार में हमें शरीर के नाम और रूप की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। हमें अपने शारीरिक नाम और रूप की कॉन्शियसनेस बनी रहती है। कुछ ही कर्म व्यवहार में आप अपने आप को चेक करें तो पाएंगे कि हम संबंध के अभिमान में आकर व्यवहार करते कि मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंध के अभिमान में आकर व्यवहार करते इस प्रकार हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है, बल्कि हम अपने आप को अपने प्रोफेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं मिनिस्टर। इतने तक कि रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हमारी ये कॉन्शियसनेस बनी रहती है और इसलिए हम कहते हैं कि मैं एक्स मिनिस्टर हूं, मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूं। हमारी पर्सनालिटी ह्यूमन बीइंग के बजाय ह्यूमन डूइंग ज्यादा है। इवन हमारे एक दोस्त से संबंध जो है वो भी ह्यूमन बीइंग से नहीं, ह्यूमन डूइंग से ज्यादा है। कौन क्या करता है उस आधार पर हमारे संबंध निर्भर रहते। हमें अपनी जाति की कॉन्शियसनेस रहती है, भाषा की कॉन्शियसनेस रहती है, धर्म की कॉन्शियसनेस रहती है, हमें अपनी नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं जैपनीज हूं, मैं अमेरिकन हूं। तो प्रैक्टिकल जीवन को अगर हम देखें तो आज हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। हमारे जीवन की मुख्य दो ही प्रवृत्ति है, देह और देह संबंधों को निभाना और धन साधन कमाना, यही हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य बन गए हैं। हम अपनी रोज की दिनचर्या को ही केवल देखें, प्रतिदिन 24 घंटे का हिसाब आप लगाइए, 24 घंटे में कितना घंटा हम रोज सोते हैं, कितना घंटा सोते हैं? हाँ, अभी तो नहीं सो रहे हैं ना, हाँ? कितना घंटा रोज सोते हैं? 7-8 घंटा। रोज हम नहाते हैं, तैयार होते हैं, 3 बार हम खाते हैं, कितनी बार खाते? अनऑफिशियल कितनी बार खाते? ऑफिशियल आप गिनती कराएंगे कि 2 बार 3 बार, अनऑफिशियली सारा दिन कितनी बार खाते रहते? हाँ, अगर आप हिसाब करें प्रतिदिन केवल 12 घंटा, टोटल 12 घंटा हमारा केवल सोने में, नहाने में, तैयार होने में, खाने पीने में ही खर्च होते, 50% टाइम केवल खाने पीने सोने में होता है। अब बाकी जो 12 घंटे रहे उसमें से कितने घंटे नौकरी धंधे में जाते हैं, चाहे बहने घर संभालती है, भाई नौकरी करते, उसमें कितने घंटे जाते? 8-10 घंटे, मीन्स 35% टाइम नौकरी धंधे के पीछे खर्च होता है, और वो नौकरी धंधा भी हम किस लिए करते हैं? क्या कहते भाई? पेट के लिए। पेट के लिए सब करना पड़ता है। अब बाकी रहे जो 2-4 घंटे हैं, वो पारिवारिक सामाजिक कार्यों में, टीवी रेडियो मनोरंजन में ही खर्च हो जाते। तो हमारी रोज की दिनचर्या को देखते हुए तो यही सिद्ध होता है कि हम बॉडी कॉन्शियस और सांसारिक बन गए हैं। ऐसी जीवन पद्धति में अगर हमें कोई आत्म कल्याण के लिए कहते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं? कि हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, हमारा मेजोरिटी टाइम मनी एनर्जी लेबर देह देह के संबंध और इस दुनियावी कारोबार में ही खर्च होते। तो यहां हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम शरीर हैं? क्या मैं शरीर हूं? क्योंकि मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो 2 बातों का अस्तित्व सिद्ध होता है, एक ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग, उसे ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मानव शरीर प्लस आत्मा मनुष्यात्मा उसे कहा जाता है। अब मानव शरीर के लिए आप सभी जानते हैं कि शरीर क्या है। शरीर क्या है कि हार्ड मास से बना हुआ एक पुतला है। प्रकृति के जो पांच तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि मिट्टी का बना मानव पुनः मिट्टी में मिल जाता है। जैसे संसार की हर चीज किससे बनी है, ये जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, ये कुर्सी है, सोफा है, ये चित्र है, पंखे हैं, माइक है, घड़ी है, मकान है, ये जितने भी चीजें पदार्थ हैं, एक सुई से लेकर बड़े से बड़ी मशीन तक, संसार के सभी पदार्थ किसमें से बनते? प्रकृति के पांच तत्वों से बनते। तो जैसे ये सारे पदार्थ जड़ है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है, इसी प्रकार प्रकृति के पांच तत्वों का बना हुआ यह शरीर भी जड़ है, परिवर्तनशील है, नाशवंत है। इसलिए हम हरेक अपने ही शरीर के साक्षी हैं कि बचपन से लेकर अब तक हम सबका अपना अपना शरीर भी हमारे अपने देखते देखते कितना बदल गया है। तो शरीर परिवर्तनशील है, जड़ है, नाशवंत है और प्रत्येक जड़ पदार्थ भोग्य है। उसे भोगने वाली, उसका उपयोग करने वाली शक्ति उनसे भिन्न। जैसे ये पृथ्वी है, वो अपने लिए अनाज नहीं उगाती, सूर्य अपने लिए रोशनी नहीं देता। हम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, नदी अपना पानी नहीं पीती है। ये पांचों ही तत्व भोग्य है, उसको भोगने वाली शक्ति उनसे भिन्न। इसी प्रकार पांच तत्वों के बने हुए शरीर को धारण करने वाली, उसका उपयोग करने वाली शक्ति उनसे अलग है। तो शरीर स्थूल है, पांच तत्वों से बना मटेरियल है, मैटर से, तत्वों से बनी हुई चीज को मटेरियल कहते हैं। शरीर भी पांच तत्वों से, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल, जो स्थूल है, इन आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन दूसरी है अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति, जिसके अस्तित्व में हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। जिस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जैसे ही वो चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम उस शरीर को क्या करते हैं? हाँ, खत्म कर देते। हमारे एक दो के साथ जो संबंध है वो भी समाप्त हो जाते। फिर वो शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अपनी ही कोई प्रिय व्यक्ति का क्यों ना हो, लेकिन उस शरीर को हम घर में रखते हैं? हाँ, नहीं। तुरंत सभी क्या कहने लगते हैं? हाँ, भाई जल्दी निकाल। हमारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। उस अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको हम सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, जिसको हम साइकी कहते हैं, लिविंग एंटिटी कहते हैं, स्पिरिचुअल फोर्स कहते हैं। सरल भाषा में उसे आत्मा कहा जाता है। तो मनुष्य आत्मा कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्वों का बना हुआ शरीर जो बाह्य है, प्रत्यक्ष है, स्थूल है, और दूसरा है चैतन्य शक्ति आत्मा जो अति सूक्ष्म है, आंतरिक है, चैतन्य। प्रश्न आप सबसे अब ये है कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं? क्या हम शरीर हैं या चैतन्य शक्ति आत्मा? हम कौन है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं कौन हूं? क्या मैं जड़ शरीर हूं या चैतन्य शक्ति आत्मा? कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर जड़ है, स्थूल है। मैं जड़ नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, क्योंकि मैं सोच सकती हूं, मुझे विचार चलते हैं। ये सोचना, विचार करना चैतन्य की निशानी। हमें इच्छा होती है, कोई सुंदर स्थान आप देख कर आते हैं, देखने के बाद फिर देखने की इच्छा होती है। वो इच्छा किसको होती है? आंखों ने देखने का कार्य किया, अब आंखों के सामने से वो स्थान हट गया है, लेकिन फिर देखने की इच्छा, देखा हुआ फिर स्मृति में किसको आता है? हम कर्म करते हैं, क्रियाशील है, हम जड़ निष्क्रिय नहीं, क्रियाशीलता चैतन्यता की निशान। हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है, इवन कोई ऑर्गन्स में हमें अनुभव नहीं होता है तो हम कहते हैं कि भी मेरा हार्ट डेड हो गया, ये ऑर्गन मेरा डेड हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। अनुभव चैतन्यता के निशान। हमें अन्य के लिए सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। अगर किसी के दुख कष्ट पर आपको थोड़ी भी सहानुभूति ना हो तो लोग उसके लिए क्या कहते हैं? कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर दिल। सहानुभूति चैतन्यता की निशानी। तो हम सोचते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं, हमें स्मृति रहती है, हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होते हैं, हमें सहानुभूति होती है, ये सब चैतन्यता की निशानी। इससे सिद्ध है कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर की मालिक, इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा। सुनने में ये बात बहुत छोटी सी आपको लगती है, आप सोचेंगे कि बहन जी ये तो हम जानते ही हैं, जानते हैं ना? जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो श्रद्धांजलि में भी आप क्या कहते? कि उस आत्मा को शांति मिले। जानते हो तब तो कहते हो ना? शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए तो हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जीते जी शरीर में रहते हुए हम स्वयं को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली तो देह भान में ही रहते, शरीर छोड़कर, शरीर तो यहां ही है ना, गया कौन? आत्मा। तो शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए तो आप कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, लेकिन जीते जी शरीर में रहते हुए हम खुद को आत्मा समझते नहीं हैं। प्रैक्टिकली तो देह भान में ही रहते, हमारी कॉन्शियसनेस में तो यही पक्का है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसलिए सुनने में ये बात भले साधारण लग रही हो, जानी हुई महसूस हो रही हो, लेकिन ये मूलभूत सत्य बात है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है और ये मूल सत्य ही हम भूल गए। इसलिए अब हमें उठते बैठते कर्म करते खाते पीते सोचते देखते सोते हर कर्म करते हुए अब ये अवेयरनेस रखनी है, ये स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तत्वों से बना है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। आत्मा शरीर धारण करने के बाद जीवात्मा मनुष्यात्मा कही जाती, इसलिए शरीर एक वस्त्र के समान है, आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति। चित्र में बताया है कि शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली ड्राइवर के समान। जैसे एक ड्राइवर सारा दिन गाड़ी चलाता है, लेकिन क्या वो अपने को मोटर समझता है? नहीं, उसको क्लियर है कि मोटर अलग है, मैं अलग। इस प्रकार हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए हमें ये स्पष्ट रहे कि शरीर अलग है, मैं आत्मा इनसे अलग। इस हॉल में आप बैठे हैं, आपको स्पष्ट है कि हॉल अलग है, आप अलग है। आप सोफा पर बैठे हैं, आपको स्पष्ट है कि सोफा अलग है, आप अलग है। अगर आप सोफा से अटैच हो जाएं और सोफा सहित चलना चाहे तो चलना सहज होगा या मुश्किल होगा? अगर आप सबको कहा जाए कि अपनी कुर्सी सहित जाइए तो मुश्किल होगा ना? आप सोफा से डिटैच होते हो, अलग होते हो, तब आप सहज उठकर जा सकते। तो जीवन मुश्किल इसलिए हो गया है कि हम शरीर से अटैच हो गए, देहभान में आकर कर्म करते हैं, इसलिए जीवन हमें बोझ लगता है। गृहस्थी का हमें एक टेंशन रहता, लेकिन आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखिए कि जो कारोबार आज देहभान में आकर आप करते हैं, वही कारोबार, वही जिम्मेवारी आप खुद को आत्मा समझकर करें तो करते हुए भी आप हल्के रह सकेंगे। कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग, मैं इन आंखों से देखती हूँ लेकिन मैं आंख नहीं, मैं इन कानों से सुनती हूँ लेकिन मैं कान नहीं, मैं इस मुख से बोलती हूँ लेकिन मैं मुख नहीं। ये मेरी कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों से मैं कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। मैं आत्मा करता हूँ, भोगता हूँ। ये हमें सदा बुद्धि में रखना है। तो राजयोग की पहली प्रैक्टिस है खुद को शरीर से अलग आत्मा निश्चय करना। ये है पहला अभ्यास। जब तक शरीर के भान में रहेंगे, शरीर के मित्र संबंधी याद आएंगे। आत्मा स्मृति में रहेंगे तो स्वतः बुद्धि योग परमात्मा से जुटेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब तक मन भटकने का मुख्य कारण क्या है। भक्ति में यही कंप्लेन सब करते हैं ना, कि हम भगवान को याद करने बैठते हैं पर मन एकाग्र नहीं हो। हम बरसों से भक्ति करते हैं लेकिन मन भटकता रहता है। तो मन भटकने का कारण है देह अभिमान। मन की चंचलता का मूल कारण है देह अभिमान। इसलिए अगर हम अपना योग परमात्मा से लगाना चाहते हैं, सांसारिक विचारों से मन को मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें देह भान से न्यारा होना होगा। अब तक हम क्या सोचते रहे कि हमें योगी बनना है, तपस्वी बनना है? तो वो तभी बन सकते हैं जब ये सब कुछ छोड़ दे, है ना? इसलिए लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थी है बहन जी, हम कहां योगी बन सकते। हमारे पर तो बहुत जिम्मेवारियां हैं, ये सब कुछ छोड़े कहीं जंगल में एकांत में जाकर बैठे तो मन परमात्मा में लग सकता है। इसलिए जब कभी आध्यात्मिक पुरुषार्थ की बात कहा जाता है, आत्म कल्याण के पुरुषार्थ की बात कही जाती है, तो लोग अक्सर यही उत्तर देते हैं कि जब बहन जी हम रिटायर्ड हो जाएंगे ना, हाँ बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर हम ये सब करेंगे। अभी तो हमारे पर बहुत जवाबदारी। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि मन परमात्मा में एकाग्र करने के लिए हमें अपनी जिम्मेवारियां छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें इस दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें देह भान को छोड़ने की जरूरत है। और इस देह अभिमान को मिटाने के लिए अब तक हम क्या करते रहे कि मन इन इंद्रियों के आकर्षण में न जाए, रस स्वाद में न जाए, देह का भान मिट जाए, उसके लिए हम देह दमन करते रहे। देखो कोई कठिन आसन प्राणायाम करते हैं, शरीर को ही सुखा देते, इतने कड़े उपवास करते, कई मौन कर लेते, कई हैं जो आंखें बंद करके बैठते, कई खुले पांव चलते हैं, कम वस्त्र पहनते, हम इंद्रियों को कष्ट देते हैं कि देहभान मिट जाए। लेकिन राजयोग हमें सिंपल मेथड सिखाता है कि देहभान को मिटाना है तो अपने को आत्मा समझो। अपने आत्मा स्वरूप को भूले तब तो देहभान में आए। इसलिए सीधा सा हिसाब है कि हम खुद को आत्मा समझें, सबको आत्मा दृष्टि से देखें। अगर ये अभ्यास हम अपनी दिनचर्या में करते रहे तो हम सहज ही सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। आप में वो अभ्यास हो जाएगा कि शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म। इसलिए हम इन आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रियलाइज हम कर सकते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर बॉडी को कंट्रोल करती है। हम कह सकते हैं कि ये जो मस्तक है वो शरीर का मेन कंट्रोलिंग रूम है, और आत्मा चूंकि बॉडी का कंट्रोलर है इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर का संचालन करती है, जिसकी यादगार भक्ति में आप देखिए कि हम मस्तक में तिलक करते हैं। हर शुभ कार्य में भाई हो या बहन हो, हम हरेक को अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये आत्मस्मृति की निशानी है। हम भक्ति में अक्षत कुमकुम लगाते हैं लेकिन रहते देहभान में ही है। हम बाहर की रस्म करते हैं, अंदर की कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं कर। इसलिए यहां हम तिलक नहीं करते, खुद को आत्मा समझते हैं, आत्मा दृष्टि से देखते हैं। हमें ये स्पष्ट है कि शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है, लेकिन हैं हम आत्मा, और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई है। जीवन का ये प्रथम सत्य अगर हमें पक्का हो जाए तो इस देह के जाति धर्म भाषा आयु लिंग के जो भेद है वो सारे समाप्त हो जाए। अब शरीर के लिए हमें स्पष्ट है कि शरीर माना ये हाथ पांव आंख नाक कान मुख, इन कर्मेंद्रियों के समूह को शरीर कहते हैं। ऐसे आत्मा माना क्या? आत्मा किसको कहते? तो चित्र में बताया है कि आत्मा की ये मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार के चैतन्य समूह को आत्मा कहते। अब मन माना क्या? मन शब्द से तो परिचित है ना, हम कहते हैं कि मेरा मन अशांत है, मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, आज मेरा मन भटक रहा है। तो मन माना क्या? मन माना क्या? जब हम कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, माना क्या होता है? क्या होता है? कोई चीज तो नहीं है जो निकल कर भटकती है? मन भटकता है माना क्या होता है? अनेक विचार आते हैं। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन कोई शरीर का अंग नहीं है, मन कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है। आत्मा की विचार शक्ति को, आत्मा की संकल्प शक्ति को, मनन शक्ति को मन कहते हैं। और मन का कार्य है, मन का कार्य है सोचना, विचार उत्पन्न करना। इसलिए विचार उठते ही रहते हैं। अगर मैं आप सबको कहूं कि एक मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाएं, एक भी विचार न करें, तो ये हो सकता है? हाँ? नहीं। विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। कभी आप नोट करिए, एक मिनट साइलेंस में बैठकर जितने भी मन में विचार आते हैं वो नोट करते जाइए। मेडिकल साइंस कहता है कि व्यक्ति प्रति 2 सेकेंड एक विचार उत्पन्न करता है। एक मिनट में मनुष्य 20 से 30 विचार कर लेता है। और ये अनुभव हम सबको है कि जब हम टेंशन में होते हैं, वैर और द्वेष की स्थिति में होते हैं, तो विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती। तो मन का कार्य है सोचना। हम मन को मार नहीं सकते हैं, मन को विचार शून्य नहीं कर सकते हैं, मन का दमन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मन के चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए राजयोग में हम मन का दमन नहीं करते हैं, लेकिन मन को परमात्मा से जोड़कर मन को श्रेष्ठ मन, सुमन बनाते हैं। इसलिए अब तक तो देह अभिमान में होने के कारण हमने मन का अधिक उपयोग कौन से चिंतन में किया है? मन से अधिक चिंतन कौन सा करते रहे हैं? हाँ, आप ऑब्जर्व करिए, अधिक विचार कौन से चलते, वही देह के, दुनिया के, घर के, कारोबार के, नौकरी के, समाज के, संबंध के, यही सोचते रहे हैं। अब हमें मन का उपयोग स्व चिंतन में करना है। अब हम मन को आत्म चिंतन में लगाएं। पर चिंतन हम सहज ही कर लेते, पर चिंतन करना आता है हाँ? पर चिंतन हम सहज ही करते हैं। तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं। हम आपस में मिलते हैं, पर चिंतन, सांसारिक चिंतन घंटों तक करते हैं। उसमें हमें समय की कोई सीमा रहती है हाँ? नहीं। उसमें किसी को नींद आती है नहीं हाँ? पर चिंतन हम कैसे करें वो सीखने के लिए कोई शिविर करने आप गए थे हाँ? उसमें कैसे मास्टर बन गए हाँ? और स्व चिंतन 5 मिनट करने के लिए बिठाते हैं तो भी लोग सो जाते, नींद करने लगते। हम 5 मिनट भी खुद में स्थित नहीं हो पाते, लोग परेशान हो जाते, घड़ी देखते रहते कि ये कब 5 मिनट पूरा हो, बंधन लगता है। ये क्या सिद्ध करता है कि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है। कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करते हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट है। हमें इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। इसलिए हम स्व में स्थित नहीं हो सकते, तब तो मन भटक रहा है। तो मन का कार्य है सोचना, इसलिए मन को स्व चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, परमात्मा चिंतन में हमें लगाना। अब विचार तो हमें अनेक आते हैं, पर उसी सेकेंड सभी विचार कर्म में आते हैं। अभी अगर मैं 1 मिनट आपको शांत बिठाऊं, तो आपको अनेक विचार आएंगे कि भूख लगी है, क्लास पूरा होगा नाश्ते पर जाएंगे, कमरे में जाएंगे, वो चीज लेनी है, उसको फलानी बात कहनी है, अनेक विचार आएंगे। पर इसी सेकेंड कर्म में एक ही विचार आ रहा है, आपने निर्णय किया कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं। तो मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति, उसे बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, आत्मा की विवेक शक्ति, आत्मा के जजमेंट पावर को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का कार्य है टू डिसाइड, निर्णय करना। इसलिए कहते हैं कि मन घोड़े समान है तो बुद्धि उसकी लगाम है। पर आज बुद्धि शुद्ध नहीं रही है, बुद्धि कमजोर बन गई, क्योंकि हमारी बुद्धि उन व्यक्तियों में फंसी है, उन चीजों में आसक्त हुई है जहां से बुद्धि को कोई शक्ति नहीं मिलती। इसलिए बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। कई बार हम मूंझते हैं, कई बार हम निर्णय करते हैं तो राइट निर्णय नहीं कर पाते, कई बार हम राइट निर्णय करते हैं लेकिन उस अनुसार चल नहीं पाते। हम निर्णय करते हैं कि भाई हम सबके साथ प्यार से चलेंगे, हम सबको सुख देंगे, हम शांति से काम करेंगे, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें, स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सा आ जाता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन मेरे मुख से निकल गए, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सिद्ध करता है कि बुद्धि पतित बन गई है, कमजोर बन गई है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें बुद्धि योग परमात्मा से लगा, परमात्मा की याद बुद्धि को शुद्ध करती, एम्पावर करती है। इसलिए अब हमें बुद्धि योग परमात्मा से लगाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, जो कर्म संस्कार के रूप में आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, खुलेआम करते हैं, गुफा में छिपके करते हैं, लेकिन जो भी कर्म करते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और बार बार वही कर्म करने से वो प्रभाव दृढ़ हो जाता है, जिसको हम स्वभाव संस्कार कहते हैं। व्यक्ति दो बार, चार बार, दस बार झूठ बोलता है तो उसकी आदत झूठ बोलने की हो जाती। हम दस बार, बीस बार गुस्सा करते हैं, हमारा स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। व्यक्ति दो बार, चार बार चोरी करता है, उसकी आदत चोरी की बन जाती। मीन्स कर्म ही संस्कार बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ साथ नहीं ले जाती है, लेकिन किए हुए कर्मों का रिकॉर्ड संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाता है। जैसे संस्कार, ऐसा नया जीवन प्राप्त होता है। तो जब हम कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते हैं, कर्म फल भोगते हैं, तब हम सोचने लगते हैं, फिर हम दूसरों को दोषित करते हैं कि इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, फलाना ही मेरे लिए प्रॉब्लम है। सत्यता ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है। हम चेक करें हम कितने घंटों व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं। इसलिए अगर हम अपने संस्कार को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्म को सुधारना चाहिए, क्योंकि कर्म ही संस्कार बनते। इसलिए कर्म में कंट्रोलिंग पावर हो, कर्म में सुधार करना, और कर्म में सुधार लाना है मुझे अपने बिहेवियर को चेंज करना है तो मुझे अपने चिंतन को बदलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है। विचार ही कर्म का बीज है, तो अब तक हमारा विचार ही गलत था कि मैं ये हूं, मैं फलादा। अब हमें अपनी स्मृति को करेक्ट करना है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए आप देखिए, वर्तमान संस्कार हम सभी के क्या बन गए। हरेक अपने स्वभाव संस्कार को देखे, हम हरेक पाते हैं कि हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं। हरेक आत्मा पतित, दुखी, अशांत बन गई है। हम अनुभव करते हैं कि हम अपने संस्कार से ही दुखी है, हमारी आदतों से ही हम दूसरों को दुख देते। इसलिए आरती में, भजन में, प्रार्थना में हम कन्फेस भी करते हैं, हम गाते हैं, मौसम कुटिल खल कामी कोई नहीं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, मैं पापी नीच कपटी हूँ, रियलाइज करते हैं। इसलिए भगवान को कहते रहते हैं कि आप विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। मैं पाप करता रहूं और वो हरता रहे। अच्छा हिसाब है हमारा। करूं मैं और मिटाए वो, ये तो सिद्धांत ही नहीं है। जो करेगा सो भरेगा ना। इसलिए हमें अपने संस्कार को बदलने के लिए, कर्म को बदलने के लिए चिंतन को बदलना है। बेशक आज हम आत्माएं पतित, दुखी, अशांत बन गई, लेकिन हर एक आत्मा अपने जीवन में क्या चाहती है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आपको जीवन में शांति चाहिए या अशांति। शांति, हरेक को शांति अच्छी लगे। गुस्सा करके भी इंसान आखिर शांत हो जाता है, क्योंकि शांति आत्मा की ओरिजिनालिटी है, गुस्सा नहीं। आत्मा का असली गुण शांति, इसलिए हमें शांति अच्छी लगती। हमें सुख चाहिए या दुख चाहिए, हर एक इंसान जीवन भर मेहनत करता है सुख पाने के लिए या दुख पाने के लिए। सुख पाने के लिए हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, या कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे वो हमें अच्छा लगता है। प्यार करे वो अच्छा लगता है। आत्मा को प्यार चाहिए, क्योंकि आत्मा का नेचर प्रेम स्वरूप है। हम जीवन में खुशी आनंद पाने के लिए कितने प्रयास करते, क्योंकि आत्मा का नेचर आनंद स्वरूप। इसलिए थोड़ा भी कोई उदास हो, फिकर में हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम उसे खुशी में लाने की कोशिश करते। हमें स्वच्छता अच्छी लगती है या गंदगी अच्छी लगती? स्वच्छता। तो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये सात आत्मा के असली गुणधर्म है। जैसे पानी का गुणधर्म है शीतलता, अग्नि के संग में पानी उबलने लगता है, लेकिन अग्नि से हटाओ तो वही पानी फिर शीतल बन जाता, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी शीतलता है। तो हरेक आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर में शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, सुख आनंद प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये तो हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल गए, देह भान में आ गए, इसलिए असली गुण विकृत हो गए, जिसको हम विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। इसलिए अब ऐसा नहीं कहना कि मेरा स्वभाव ही क्रोधी है। मैं कहता हूं ना, मेरा स्वभाव ही गुस्से वाला, तो आप गुस्सा ही करते रहेंगे। अब आप ये सोचिए और ये पक्का करिए कि नहीं, मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। या आप देखते ना, सब ओम शांति बोलते, वो याद कराया जाता है कि हमारा स्वधर्म शांति। और अगर आपको ये स्मृति है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो कोई कितना भी गुस्सा करेगा आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस है कि मेरा स्वधर्म शांति। इसलिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम बाहर नहीं खोजना है, हमें अपने भीतर जाना है। जैसे ही आप खुद को आत्मा समझेंगे, आप अपने में ही अनुभव करेंगे। इसलिए आनंद पिक्चरों में, होटलों में नहीं है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। मुझे आनंद नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, तो कितनी भी बड़ी महफिल पार्टी हो तो भी मुझे खुशी नहीं होती। शांति जंगलों में नहीं है, हिल स्टेशन में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। और मैं शांति की स्थिति में हूं तो अपार भीड़ में भी मुझे शांति। इसलिए स्व में स्थित होना है। इस प्रकार इस चित्र में बताया है कि हम आत्माएं इस दुनिया में शरीर धारण कर कर्म कर रहे हैं। ये जो दुनिया दिखाई है वो साकार मनुष्य लोक है। अभी जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जहाँ हम जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, इन आंखों से जो दुनिया आप देख रहे हैं, इसको साकार मनुष्य लोक कहते हैं। यहाँ आत्मा आकर शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये संसार कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है। हम तो इस दुनिया को ही अपना घर समझकर बैठ गए हैं, जैसे कि हमें यहां से जाना ही नहीं। लेकिन ये घर नहीं है, ये सृष्टि रंगमंच है। हम यहां पार्ट प्ले करने आए, तब तो कहते हो अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और हरेक को जीवन में कभी न कभी ऊपर जाने की इच्छा जरूर होती है, होती है? हाँ, कभी कभी होती है कि नहीं? जब तंग हो जाते हैं, एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं, तो अंदर से आत्मा को क्या होता है? हाँ भाई, ऊपर चले जाए अब, क्योंकि हमारा असली घर इस दुनिया से दूर शांति धाम। ये पांच तत्व की दुनिया है, पांच तत्व से पार। ये छठा तत्व है ब्रह्म तत्व। हम आत्माएं इस ब्रह्म लोक की निवासी हैं। हमारा असली घर ये ब्रह्म लोक, परलोक, शांति धाम, परम धाम। यहां हम आत्मा अपने आत्म स्वरूप में, बिंदु रूप में। यहां हमें शरीर नहीं है, इसलिए कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है। ये शांति की दुनिया, इसलिए इसको शांति धाम कहते। ये आवाज की दुनिया है, इसको टॉकी वर्ल्ड कहते हैं। तो अब हमें इस आवाज की दुनिया से परे शांति की दुनिया में जाना है। तो अगर हमें इतना भी याद रहे कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर शांति धाम है, तो इस दुनिया में रहते हुए भी आप इस दुनिया से न्यारे, डिटैच रह सकेंगे। और इस शरीर में रहते हुए अगर हमें ये पाठ पक्का हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, तो हम इस शरीर में रहते हुए भी शरीर भान में नहीं आएंगे। तो अब हम 5 मिनट अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, आंखें अपनी स्वाभाविक खुली रखें, कोई भी आंखें बंद करके नहीं बैठे। एक दो से डिटैच होके बैठे, टच नहीं करे। अपना डायरी, पर्स, फाइल एक तरफ रख दीजिए। आज मैं आपको आत्मचिंतन का अभ्यास करा रही हूं। आप मेरे ब्रकुटी में देखेंगे। ये सोचते हुए कि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं, तो हम अपनी दृष्टि आत्मा पर रखते हुए मन ही मन स्वचिंतन करेंगे। मैं सजेशंस देती जाऊंगी, आपको मुख से नहीं बोलना है, लेकिन मन ही मन ऐसे ही सोचना है। अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। A point of light and might. एक अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, यह शरीर केवल एक साधन है जिससे मैं कर्म करती हूँ। मैं इन आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ, लेकिन मैं ये कर्मेंद्रियां नहीं हूँ। इन कर्मेंद्रियों से अलग मैं आत्मा हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर धारण कर मैं कर्म करती हूँ। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। ये मेरा घर नहीं है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर है। 5 तत्वों से पार है। सूर्य चांद सितारों से भी पार, शांति धाम है। जहां ये अखंड लाल ज्योति तत्व छाया हुआ है, मैं उस ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप से। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र स्वरूप हूं। मुझे पुनः अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना है। शांति मेरा स्वधर्म है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप। मुझे अपने स्वरूप में स्थित होना है। मैं आत्मा हूँ, चेतन ज्योति बिंदु हूँ। शुद्ध और शांत स्वरूप ओम शांति।